शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक मंत्र दिया है। बाबा हमेशा मंत्र देते हैं मन मना भाव और मध्याजी भाव। आज बाबा ने उसी मंत्र को ही और महत्वपूर्ण बताते हुए बाबा ने कहा, हियर नो इविल, सो सी नो इविल, टॉक नो इविल। दूसरी बात बाबा ने कहा, तुम बच्चों को पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है और पढ़ाई से ही अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। साथ में बाबा ने बच्चों को ये भी पक्का किया कि स्वदर्शन चक्र घुमाते ही रहना है। स्वदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होते रहेंगे। ये घूमता ही रहना चाहिए, फिरता ही रहना चाहिए। स्वदर्शन चक्र जो है बंद नहीं होना चाहिए, सदा फिराते रहने का है। बाबा ने फिर ध्यान खिंचवाया कि ड्रामा अनुसार बाबा के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि नारद का एग्जाम्पल है, कछुए का एग्जाम्पल है, लेकिन तुम बच्चों को क्या करना है, अपनी चेकिंग करनी है। जैसे नारद को कहा ना कि तुम अपना मुंह तो देखो, तो बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है, अपनी चेकिंग करनी है। बनाए तो बाबा ने हैं ड्रामा अनुसार, लेकिन भक्ति मार्ग में भी देते हैं, बाहर भी कई लोग सुनाते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है वो तो नहीं करते हैं। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों को इस बात पे विशेष ध्यान देना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 11 अगस्त 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पति से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई से अपनी अवस्था कर्मातीत बनानी है, साथ साथ पति से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस भी करनी है। आज का प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। इसका उत्तर है, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप नहीं करना है। कलयुग में सब पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर वन गुण है। पाप कर्मों से बचने के लिए बाबा ने मंत्र दिया, और फिर क्या करना है, कौन सा गुण धारण करना है, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर वन गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं, बुद्धि में चलता होगा कि जरूर हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे। तीन बातें, पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद तो उनको करना। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में हैं, लेकिन याद तो उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सदगति कर नहीं सकते, मनुष्य को पतित पावन भी नहीं कह सकते। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप है, वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। किस बात की? ये बाबा हमारा है, हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, वो हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो बाबा कहते ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं, अपनी जांच भी करनी है। फिर उदाहरण क्या है, नारद का मिसाल भी है। ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं, कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, उसको बहुत प्यार से सुनते हैं, सब सुनते भी हैं और बहुत अच्छा लगता है। चाहे कितनी बार सुन लो लेकिन फिर सुनते रहते, अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन धारण कितना किया। तो बाबा कहते हैं बच्चों को क्या करना है, धारण करना है ना। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद भी तो कर नहीं सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का, इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। भल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। जयंती मनाएंगे, श्री कृष्ण जयंती आएगी, लेकिन जानते नहीं कि कब और किस प्रकार से लिया, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते जाते हो, बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते हो। तुम आत्मा हो, आत्मा का तो किसको भी पता नहीं। आत्मा तो अविनाशी है, जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना पक्का करा रहे हैं। जैसे आत्मा आती है वो सब कर्म में भी बाद में आती है, लेकिन बच्चों को क्या करना है, अभी अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है कि आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है, हम आत्माएं हैं, हमारा बाप परम पिता परमात्मा भी है और टीचर भी है। वह भी हर दम बच्चों को याद रहना चाहिए। कौन सी बात, कि हम आत्माएं हैं, आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है और वो टीचर भी हैं। तो बाबा कहते बच्चों को ये बात हरदम याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापिस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सत्युग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है, कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मते हैं। सत्युग में ये कुछ भी नहीं होता। बाबा कहते वहाँ पर केवल एक धर्म होगा। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है। ये पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते। यहाँ कौन सी किताब है आपके पास, है कोई किताब? बाबा कहते उस पढ़ाई में तो इतनी किताबें होती, बड़ी बड़ी किताबें होते हैं और बड़े बड़े वॉल्यूम होते हैं जो पढ़ने होते हैं, और इस पढ़ाई में तो कोई भी किताब ही नहीं है। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते, हर एक क्लास में नए नए किताब खरीदने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब या शास्त्र आदि की बात ही नहीं है, इसमें तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई फोटो नहीं डालते। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम जो करेंसी भी होती थी ना, उसमें राजा रानी की ही फोटो होती थी। अभी तो देखो कितना करते हैं, वो तो अपना ही सब करके चले गए। तो बाबा कहते हैं राजा रानी के सिवाय कोई का फोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भगत आदि भी जो होकर गए हैं उनका भी स्टैम्प बनाते रहते हैं। आप सबको पता है ना कि कितने प्रकार के स्टैम्प बनाते हैं, और बाबा की भी स्टैम्प बनाई थी। और आजकल तो पोस्ट तो जाती ही कम है, और तो केवल ईमेल से ही लोग चलते रहते हैं, लेकिन बाबा की भी तो स्टैम्प बनवाई थी ना। तो बाबा कहते हैं आजकल तो देखो भगत आदि जो होकर गए हैं उनकी भी स्टैम्प बनाते रहते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा और महारानी का, घर घर में केवल लक्ष्मी नारायण का ही चित्र होगा। ऐसे नहीं जो पांच देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं। बाबा कहते अभी भी देखो जगह जगह पर देवी देवताओं के चित्र है, जहाँ जहाँ भारतवासी हैं देवी देवताओं को याद करते उनके चित्र भी हैं। पर पुराने से पुराने देवताओं के चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट कौन है? शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने के लिए, ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने ही ये सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानते। बाबा कहते बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी थी और उसी से पद पाया, लेकिन किसी को दुनिया में पता नहीं, तुमने ही पाया है। तुमने ये बातें सुनी थी, पद पाया था और कोई नहीं जानते। तुमको राज्यों परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। बाबा के टाइम पर तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं था। बाबा कहते थे महाभारत लड़ाई कब होगी, कैसी होगी, वो तो आगे चल के देखेंगे। अभी देखना तो क्या, एक एक के मुख से भी सुनते रहते ना। महाभारत लड़ाई क्या होती है तुम आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते, दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते हैं वर्ल्ड वॉर लग जाए, दुनिया वाले कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर लग जाएगी। अभी भी बहुत चिंतित हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं वार को शांत करने के लिए। अभी तो ऐसे बैठे हैं जैसे चिंगारी लगने की देर है, लेकिन बाबा कहते तुम्हें क्या करना है कि वर्ल्ड वॉर से पहले अपनी पढ़ाई कर लो और अपनी स्टेज को कर्मातीत बना लो। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते रहते, दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते हैं वर्ल्ड वार लग जाएगी, उनसे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। दैवी गुण है पवित्रता का, बाकी असुरों और देवताओं की कई कोई लड़ाई नहीं होती है। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, फिर जाकर के दैवी संप्रदाय बनते हो, इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा, और आत्मा को ही कहते हैं ना पुण्य आत्मा। आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। फिर बाबा को क्या कहना पड़ता है, अब हियर नो इविल सिविल नो इविल, ये किसको कहा जाता है। बाबा कहते आत्मा को, आत्मा को आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बाबा पक्का कराते तुम बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए हो, अब फिर तुमको वही बनना। बाबा कितना अच्छे तरीके से समझाते तुम क्या थे, देवताएं थे आदि सनातन धर्म के थे, तुम्हारा धर्म भी क्या था आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो भूल गए उसको फिर से वैसा बनना है। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पार्ट बजाया है, पहले पहले हम ये थे। ये कहानी है ना, कहानी सुनाते, पहले तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तुमने ही पार्ट बजाया, तुम ही देवताएं थे, लेकिन अभी फिर से वैसा बनना है। ये कहानी है ना, बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम देवता थे, हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे ये जरा भी ख्याल नहीं आता, देवताओं को पूछते थे लेकिन हम ही हैं, हम ही इसी वंश के, ये ख्याल नहीं आता था। आगे ये जरा भी ख्याल नहीं आता था हम आत्माओं का वह घर है, वहाँ से हम आते हैं पार्ट बजाने, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। अभी तुम ब्रह्मा की संतान कौन हो, ब्रह्मावंशी, सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। तो अब बाबा क्या कहते, अभी ब्रह्मा की संतान ब्रह्मावंशी हो, तुम ईश्वरीय औलाद भी बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं, वह सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर सुप्रीम गुरु भी हैं। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। बाबा कहते मुक्ति भी और जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। ये चक्र है ना, तो बाबा कहते इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। ज्ञान की बात है ना, बाप कहते हैं तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र क्या होना चाहिए, बोलो, ये तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र क्या होना चाहिए, बताओ बहने बताओ, बोलो ना, अभी बाबा ने क्या बताया था, तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र याद ही नहीं तो क्या बताएंगे, हैं बोलो क्या होना चाहिए, भाई बता रहे हैं, फिरता रहना चाहिए, बाबा ने कहा रुकना नहीं चाहिए, फिरता रहे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, चलते फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। इस चक्कर को घुमाते रहेंगे, इस चक्कर को फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस हमें तुम रावण पर जीत पा लेंगे। पहला बाबा ने क्या कहा, स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, चलाते रहना चाहिए, चलाने से विकर्म विनाश होंगे। दूसरा रावण पर जीत पा लेंगे। तीसरा पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए, ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है। बाबा कहते चक्र फिराओ, ये भी जैसे फिराने से बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, ऐसे नहीं कि माला बैठ सिमरन करने। आत्मा में जो ज्ञान अंदर है तो तुम बच्चों को और भाइयों को भी समझाना, आत्मा में जो ज्ञान है उसका सिमरण करना है, फिर औरों को समझाना है। बच्चे भी तो मददगार बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही मैं स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, ये ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं, उनको बागवान भी कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। बाबा कहते चक्कर फिराते रहो फिराते रहो। तो बाबा कहते हैं ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो, ऐसा धर्म तो होता ही नहीं है। ऐसा तो पवित्र गृहस्थ आश्रम तो स्वर्ग में है, देव सतयुग में है। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह पुरुष बनते हैं, कहते हैं ना स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। तो इसके लिए जैसे आपको पता हो कि यहाँ पर बाबा के घर में कई बाल ब्रह्मचारी हैं और ज्ञान में चलने वाले भी कई स्त्री पुरुष पवित्र जीवन है। तो दादियों ने एक बार बड़ी दादी ने खास बाल ब्रह्मचारियों के लिए यहाँ पर प्रोग्राम रखा था, उस समय सन्यासियों के लिए भी प्रोग्राम था। उनको बताया था कि किस प्रकार से अपने जीवन को कितना ऊंच और महान बना रहे, तो ये भी उनके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। ये तो बाबा की शक्ति है जो बाबा ये सब कराते हैं। तो दुनिया वाले क्या कहते हैं तुम जानते हो। बाबा कहते हैं निवृत्ति मार्ग वाले तो सिर्फ पुरुष बनते हैं, सन्यासी जाएंगे अकेला बनता है ना। तो बाबा के कहते हैं ना स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। बाबा ये भी बता रहे सतयुग में तो थे ना, कौन सा मुश्किल, हमारे ही धर्म के अंदर थे, सतयुग था, सब कुछ था। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा भी तो गाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं, हम ही पूजे से पुजारी बने, फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके कि तुम्हारे इतने जन्म थे, तुम इन्हें पार्ट बजाया, ऐसे किया। बाबा कहते केवल मैं ही बताता हूँ, ऐसे और कोई बता ना सके, ऐसे और कोई मनुष्य बता ना सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र बन ना सके, शरीर तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होता जाता है, क्या क्या लगता रहता है। तो बाबा कहते शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके, आत्मा जब पावन बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। तुम आत्माओं को पवित्र होकर जाना है, पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है, बाकी अब स्वीट होम में चले जाए। बाबा कहते हैं पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है, फिर उसके बाद क्या होगा। बाबा बताते हैं, फिर से पढ़ती हूँ, सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है, पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, ये याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ और क्या याद करना है, बाबा कहते बाप की याद के साथ साथ घर को भी याद करना, बाबा को भी याद करो, घर को भी याद करो और अपनी राजधानी को भी याद करना है। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि अब वापिस घर जाना है, घर भी बाप को याद करना है, घर में ही बाप को याद करना है। कई ऐसे बच्चे हैं कभी कहेंगे बाबा को कहाँ याद करें, बाबा को घर में भी याद करो, बाबा को अपने सामने भी याद करो, बाबा हमारे साथी है, बाबा हाथ पकड़ करके चला रहा है। तो बाबा को याद करने के तो कई तरीके हैं, तो बाबा क्या कहते घर को भी याद करो और घर में ही बाबा हैं, बाबा को भी याद करो, घर में ही बाप को याद करना है। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे। बाबा हमेशा कहते थे बाबा सारा टाइम तो इस रथ में नहीं बैठते हैं। बाबा कहते कोई सारा टाइम अपने रथ की सवारी करता है क्या? सारा टाइम तो नहीं बैठते, बाबा जब चाहे आ जाए, ज्ञान सुनाए फिर चला जाता, फिर अपने घर में चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बाबा को अपने घर में याद करो। तो भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। बाप स्वीट होम से टूटना नहीं चाहिए, बुद्धि स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर कर छोड़ के आते हैं, टीचर घर छोड़ आते हैं पढ़ाने के लिए, फिर थोड़ी ऐसे घर छोड़ के आगे यहीं बैठा रहेगा, फिर वापस अपने घर जाएगा ना। तो बाबा कहते टीचर घर छोड़कर आते हैं पढ़ाने के लिए, तुमको पढ़ाकर स्वीट होम ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं, सेकंड में कहाँ भी जा सकते। बाबा कहते मैं यहाँ थोड़ी मैं एक सेकंड में आएंगे और एक सेकंड में चले जाएंगे, सेकंड में कहाँ भी जा सकते। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने भी आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान तो आज तक कभी किसी ने दिया ही नहीं है ना, इतनी छोटी है, इतना पार्ट है। तो बाबा कहते तुम लोगों को अंदर ही अंदर आना चाहिए कि आत्मा का ज्ञान केवल बाबा ने ही हमको दिया है। तो बाबा ने कहते बाप ने आत्मा का ज्ञान दिया है, ये भी तुम जानते हो स्वर्ग में कोई भी गंदी चीज होती नहीं है, कुछ भी, न मच्छर, न मक्खी, न गंदगी, न कोई ऐसी चीज जिससे हाथ पांव गंदे हों। और यहाँ तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ गंदगी है। बार बार कहेंगे कुछ भी करो हाथ धोओ, सैनिटाइजर यूज़ करो, तो पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं, बहुत गंदी चीज़ें हैं पूरी कलयुगी दुनिया में। बाबा कहते ये भी तुम जानते हो स्वर्ग में कोई गंदी चीज़ होती नहीं जिससे हाथ पांव और कपड़े आदि मैले हो। वहाँ तो कपड़े मैले होने का सवाल ही नहीं है, हाथ पांव मैले होने का सवाल नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है। देवताओं की कैसी सुंदर परवाहिश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे जब साकार में, तो उनके कितने अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे। अभी भी देवी देवताओं को कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, डेकोरेटेड पहनाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसे वैसे साधारण कपड़े कभी भी उनको नहीं डालेंगे, गोल्डन होगा, चमकीले होंगे। उनकी परवरिश इतनी सुंदर थी तब तो, अभी भी यादगार में उनको देखो ना, कितनी सुंदर परवरिश डालते हैं, कपड़े डालते हैं। तो बाबा कहते हैं देवताओं की कैसी सुंदर परवरिश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की दरकार ही नहीं, इतने सुंदर होंगे। बार बार सोने को थोड़ी धोते रहेंगे, सोने से सजे होंगे, हीरे मोतियों से सजे होंगे, उसको बैठ करके थोड़ी धोते रहेंगे। तो बाबा कहते धोने की दरकार नहीं, इनको देखकर कितनी खुशी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। बाबा ने एक बॉल दे दिया, एक बताया सौदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए, दूसरा लक्ष्मी नारायण को देखते रहना चाहिए। क्यों देखते रहना चाहिए? खुशी होगी कि हम जा कर के ये बनेंगे। तो बाबा कहते बस देखते रहना चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। ये चित्र सबके पास होना चाहिए। बाबा ने साकार के टाइम पर छोटे छोटे चित्र बनवाए थे और सबको दिए थे। सबको कहा था कि अपने पॉकेट में रखो, और वो पॉकेट में रख करके लेकर के उसको पढ़ते देखते रहते थे तो बहुत खुशी होती थी। साकार में बाबा खुद भी लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जा कर के बैठते थे, और बाबा को ये नशा रहता था कि मैं जा कर के ये बनूँगा, अभी जा कर के ये बनूँगा। तो बाबा को नशा भी रहता था, बाबा पुरुषार्थ भी करते थे। एक होता नशा रहना, एक होता पुरुषार्थ करना, एक होता है अपना ध्यान देना। तो बाबा ने तीन काम किए। बाबा चेक भी करते, वैसा पुरुषार्थ भी करते, नशे में भी रहते थे। तो बाबा कहते बच्चों को भी ऐसे ही करना है। तो बाबा कहते हैं इसमें बड़ी खुशी होनी चाहिए, हमको बाबा ये बनाते हैं, ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं। बाबा को जरा भी नहीं अच्छा लगता था कि बाबा के बच्चे छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर दें, छोटी छोटी बात पे मायूस हो जाएं। तो बाबा को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। बाबा तो बच्चों को पक्का कराते थे, बाप के बच्चे हो, बाबा मिला है, पिता सामने बैठा है, तो फिर क्यों रोते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं। हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। है कोई फिक्र? बहुत फिक्र रहते हैं ना बच्चों को। बाबा को इतने नहीं थे, बच्चों को आजकल ज़्यादा रहते हैं। बाबा क्या बता रहे, हमको कोई फिक्र थोड़ा होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर के महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। फिर बाबा कहते अचतम केशवम, कितने नाम बोलते जाते, कितनी महिमा करते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जो याद करते हैं। लेकिन शास्त्रों को किसने लिखा, व्यास ने या कोई नए नए? व्यास ने तो लिखा पहले, उसके बाद और भी लिखते चले आए ना। तो बाबा कहते या कोई कोई नए नए भी बनाते हैं। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, जब ग्रंथ बना बहुत छोटा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया। हाथ से लिखा हुआ था, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है, जरूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे, घर भेजने वाला कौन? घर से तो आते रहे ऑटोमेटिकली, लेकिन बाबा कहते हैं घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट है? नहीं, वह तो भिन्न भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है, सतो रजो तमो में आते हैं। इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़ जड़ी भूत अवस्था है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापिस जाना है अपने घर, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होता है। स्थापना विनाश फिर पालना। बाबा ने ये करेक्शन कराया था, स्थापना पहले कहते ना स्थापना पालना और विनाश, बाबा कहते थे नहीं पहले बोलो स्थापना, स्थापना के बाद फिर पुरानी चीज़ों का विनाश, फिर नई चीज़ों की पालना। तो इसलिए बाबा कहते क्या करना है, स्थापना विनाश और पालना। हम नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, स्थापना पालना और विनाश, लेकिन बाबा ने करेक्ट किया, स्थापना विनाश और पालना। तो बाबा कहते हैं सतयुग में एक ही धर्म होगा, ये भी स्मृति में आना चाहिए। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापिस घर जाएंगे। तुम बोलते बोलते कौन हो? तुम बोलते बोलते स्वदर्शन चक्रधारी, बोलते चलते फिरते कौन हो? तुम बोलते चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहती है कि कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, उनसे सबको मारा, अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं, आश्रीपना खत्म होता है। स्वदर्शन चक्र से पाप कटते हैं, आश्रीपना खत्म होता है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो ना सके। असुर है कलयुग और देवताएं हैं सतयुग में, और बीच में है संगम योग। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, ज्ञान का सागर एक ही बाप है सबके लिए। सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापिस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है। तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी बाबा बता रहे हैं बार बार कि क्या बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी, और स्वदर्शन चक्र फिराता रहना चाहिए। तो बाबा कहते हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते, हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी मिल नहीं सकता। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक परलौकिक, और ये हैं अलौकिक बाबा। तो सबको कितने हो गए? लौकिक, परलौकिक और अलौकिक। निर्मल शांता दीदी को बहुत खुशी होती थी। वो कहती थी मेरे 3 in 1 है, 1 in 3 और 3 in 1 ऐसे, क्योंकि उनका लौकिक भी वही, अलौकिक भी वही, पारलौकिक भी वही। और हम बच्चों को 3 है, लौकिक अलग है, अलौकिक एक है, पारलौकिक भी एक है। इस समय की बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को स्मरण करते हो, ब्रह्मा को नहीं करते, ब्रह्मा के तन में, लेकिन याद किसको करते हैं? बाबा कहते शिव बाबा को करते ना, ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूछते हैं जब सब, जब सूक्ष्म वतन में दुनिया वाले पूजा करते हैं उनकी, किसका? संपन्न स्वरूप के। तो बाबा बता रहे हैं भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूछते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त, जब साकार में है तब तो बाबा को कितना सुनना पड़ा, तो उस समय थोड़ी पूजा। जब वो संपन्न बन जाता है तो भक्ति में यादगार हो जाता है, उनकी संपूर्ण अव्यक्त अवस्था है। ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है, वह तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े कि ये कहाँ का है। दाढ़ी दिखाते तो जरूर इस दुनिया का है, सूक्ष्म वतन में संपन्न स्वरूप है। तो बाबा कहते देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंचते ऊंच है। तुम्हारा नाम बाला है इसलिए तुम्हारा मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंचते ऊंच है। सोमरस पिलाया फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी दिलवाला का मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ। बाबा बता रहे एकदम यादगार है। मंदिर में नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? तो उसमें क्या दिखाया? नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर स्वर्ग है, तो वह बताते कि नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, मंदिर को बनाया लेकिन तपस्या कर रहे हैं तो इतना स्थान भी तो है ही ना, स्वर्ग का सीनरी बनाने के लिए तो वो छत पर बना दिया, तो उसको पढ़ करके लोग समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, लेकिन बाबा कहते स्वर्ग भी यही है। बाबा कहते हैं फिर यहाँ दिलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, तो ऊपर छत में बना दिया है। बनाने वाले कोई समझते नहीं हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनों को भी ये समझाना कौन सी बात कि स्वर्ग कहाँ है, कैसे स्थापन होता है। तुमको अभी ज्ञान मिला है जो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अंदर से आसरीपने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अंदर से आसरीपने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरा बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उनका स्मरण कर अपना कल्याण करना है। वरदान सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भाव, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भाव। जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते हैं लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते। अलग अलग होते हैं ना डॉक्टर, ये सर्जन है, ये डेंटिस्ट है, ये इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, तो वो एक एक सब्जेक्ट के अंदर मास्टर बन जाते हैं ना। ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता की विद्या की देवी, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप में अनुभव में लाते। बाबा कहते हैं ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही भी है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते, आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्वशक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। स्लोगन विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अव्यक्त इशारा जो टॉपिक चल रहा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। कहते ना याद कैसे करें, मन नहीं लगता बाबा को, याद नहीं कर सकते। तो बाबा ने उसका जवाब दे दिया। बाबा ने कहा जब मन ही पाप का है तो फिर तो ये प्रश्न है ही नहीं। जब मन ही पाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न उठ नहीं सकता। क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं प्यार स्वरूप, मास्टर प्यार के सागर बन गए, तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती है। अभी आज हम दादी जी की एक और विशेषता सुनेंगे। रोज ही विशेषताएं सुनते रहेंगे और साथ साथ उसका भी स्वरूप बनने का पुरुषार्थ भी करना है। तो आज है 11 तारीख, नव निर्माण के लिए नम्रता की मूरत। नव निर्माण के लिए नम्रता की मूरत, दादी जी सदा नम्रता की मूरत बनकर रही। दादी जी कहती कभी कोई भी बात हो जाए तो हार माल, हारमनी के दादी कहती हारमनी, हार माने सब कुछ खत्म। दादी जी कहती जब कोई भी बात हो जाए तो हार मान लो, इससे हारमनी हो जाएगी। अगर कभी कोई बात फोर्स से कहता तो दादी उसे फौरन कट नहीं करते थे, सुनते रहते, चुप रहते थे। और फिर बाद में जो ऐसा बोलने वाला होता था उसको रियलाइज होता था कि ये मैंने क्या बोला। दादी कभी कट नहीं करती थी, उसकी बात को सुनती और बहुत सहज भाव से कहती इस पर आपस में विचार करेंगे, बाद में समय देकर उसे समझाती और बहुत नम्रता से राइट रॉन्ग को स्पष्ट कर देती। दादी जी ने हर एक की बात को सुना समाया, तब वह नव निर्माण के कार्य में सफल हुई। ऐसे ही हमें नम्रता का मूर्त बनकर विश्व निर्माण का कार्य करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज कल से तो भट्टी वाले
कहल वालों का कपड़ा।
अच्छा, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांति वन के ट्रायल वाले भाई बहने जिनका कार्ड लिस्ट में है, उन सभी को आज सुबह 10 बजे हॉल नंबर शांति वन के हॉल नंबर 87 से कपड़ा दिया जाएगा। कपड़ा लेकर के दादी मीटिंग हॉल में बैठना है, जहाँ पर मुन्नी दीदी उनसे मिलेंगी। पांडव भवन, ज्ञान सो और शांति वन के समर्पित और जिनको पन्ना मिलता, पेज मिलता वाले भाई बहने जिन्होंने अभी तक कपड़ा नहीं लिया है, उन्हें भी आज हॉल नंबर 87 से कपड़ा लेना है। वह भी वहाँ से कपड़ा लेकर दादीज मीटिंग हॉल में बैठेंगे। ट्रायल वाले और ट्रायल गार्ड और समर्पित वाले अपना समर्पित का कार्ड साथ लेकर के पहुँचे। अच्छा, ओम शांति। कल से तो भट्टी का नया ग्रुप भी आना आरंभ हो जाएगा। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति।